مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جمعرات کے روز برسلز میں منعقدہ نیٹو کے وزراء دفاع کے اجلاس میں نیٹو نے 3,000 اضافی فوج کو افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں وہ اطلاعات کے مطابق افغان فورسز کی تربیت کے علاوہ طالبان، داعش اور القاعدہ کے خلاف جاری امریکی کاروائیوں میں مدد دیں گے۔ یہ تعداد امریکہ کی جانب سے تقریباً 4,000 فوجیوں کے علاوہ ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج کے شرکا میں شامل ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار افغانستان سے عبدالحق عمری صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے آئی ایس پی آر کے سابق چیف اور نوٹڈ ڈیفینس انالسٹ بریگیڈیئر سولت رضا، اور بھارت سے ہمارے ساتھ دیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ستیش مشرا صاحب۔ اور عبدالحق عمری صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے۔ نیٹو کی طرف سے افغانستان کے لیے یہ جو نئی کمٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کو افغانستان میں حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
تھینک یو۔ یہ جو برسلز میں جو ڈیفینس منسٹر ناٹو کی جو کانفرنس ہوا، اس میں جو فیصلہ آیا، ایک فیصلہ جو بہت واضح ہے کہ جب تک ناٹو افغانستان حکومت کا اور نیشنل آرمی کا سپورٹ کریں گی، جب تک ملٹنسی اور جو یہ جنگ جو جنگ ہے یا دہشت گردی کا جنگ ہے خاتم نہیں، تک یہ افغانستان کے ساتھ ہوں گے اور سپورٹ کریں گے۔ ایک بات اور بھی بہت واضح ہوا کہ نیٹو میں اور برسلز میں جو فیصلہ ہوا ہے، اس میں ایک جو واضح ایک بات کو بہت واضح کی گیا وہ ہے کہ پاکستان جو مداخلت کر رہا ہے افغانستان میں، اور جو ملٹنٹ گروپ ہے خصوصاً حقانی نیٹورک اور جو پشاور کی اور کوئٹہ شورا ہے، اس میں پاکستان کی بہت رول ہے۔ جو جنگ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو بارڈر سائڈ میں جو طالبان افغانستان کی سرزمین سے داخل ہو رہا ہے، وہ پاکستان سے آ رہا ہے، اور پاکستان کی جو مدارس ہے اس میں افغان طالبان کو تربیت دے رہا ہے جو پاکستانی علماء ہے، یا اس کی جو مدارس ہے کوئٹہ میں اور اکولہ خطک میں جو حقانی مدرسہ ہے، یہ چیز جب تک یہ چیز بند نہ ہو جائے اور افغان طالبان کی جو دینی جو تربیت ہو رہا ہے پاکستان میں وہ جب تک ختم نہ ہو جائے، تو جب تک یہ افغانستان میں یہ تو جنگ جاری رہے گی، اور یہ جنگ کی ساتھ یہ پاکستان کی سپورٹ ہے۔ ایک اور جو فیصلہ اس میں ہوا کہ وہ افغان کمانڈوز کا ہے، افغان کمانڈوز تقریباً اس کی جو شمار یا تعداد ہے اس کی زیادہ کرنا، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں جو ایئر فورس ہے افغانستان کی، اس میں نیٹو اور یو ایس کو جو سپورٹ کر رہا ہے اور ایئر فورس کو مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ چیز ہے کہ افغانستان میں امید بھی پیدا ہوا ہے کہ نیٹو بالخصوص امریکہ افغانستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں افغانستان کی مدد کریں گے۔ اور جب تک یہ ابھی جو یو ایس کی جو سینیٹر جان میکن سفر جو وزٹ میں ہے، ابھی کابل میں پہنچائے، اور یہ جو بات افغان حکومت سے اور جان میکن کے ایک نظر ہے کہ جب تک پاکستان میں افغان طالبان کی سپورٹرس ہو اور یہ حکومت یا ملٹری جو پاکستان کی جو ملٹنسی کی جو سپورٹ کر رہا ہے، جب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں صلح آ جائے گی، جب تک پاکستان اپنی جو اسٹریٹجی ہے یا جو اسٹریٹجک عمق ہے افغانستان میں، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، جب تک افغانستان میں صلح ناممکن ہے۔
ٹھیک ہے عمری صاحب، آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، کئی دوسرے تجزیہ کار ये बात करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चाहे जितने भी फ़ौजी जो है वो अफ़गानिस्तान भेजी जाएं, लेकिन जब जब तक जिस तरह आपने कहा पिशावर और क्वेटा शूर और हकानी नेटवर्क जो है इनको ख़त्म नहीं किया जाता तो अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो नहीं आ सकता। सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि ये भी बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो पश्तून इलाके हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में वो पॉकेट्स हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा में पूरे फाटा में, वहाँ भी अमन जो है वो नहीं आ सकता। तो क्या जिस तरह हमारे पास भी ये इत्तला आ रही हैं कि नेटो की तरफ से इस ऐलान ने, और जिस तरह अमरीका भी इससे पहले ऐलान कर चुका है कि तकरीबन 4,000 फौजी जो हैं वो मज़ीद भेजेंगे अफ़गानिस्तान, तो क्या लेकिन अफगान हुकूमत को अगर हम देखें तो वो इन ऐलानात को वेलकम कर रहा है। जिन कंसर्न्स का आपने इजहार किया, क्या अफगान हुकूमत की जानिब से इन खदशात का इजहार अमरीका के साथ कभी किया गया है, नेटो के रहनुमाओं के साथ किया गया है?
बिल्कुल, अफगान डिफेंस मिनिस्टर बाहमी जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है वो अपनी स्पीकिंग में जो ब्रसल में कहा कि मिलिटेंसी की जो सपोर्टर्स है वो मालूम है खत्ते में और इसके खिलाफ इकदाम उठाने पड़ेगी। जब तक ये जो मिलिटेंस और खसूस अफगान तालिबान की जो मराकज है और जिसकी जो तरबियत हो रहा है, जब तक वो चीज या वो सिस्टम जो पाकिस्तान में है अफगान तालिबान की, जब तक वो सिस्टम खत्म ना हो जाए, जब तक ये अफगानिस्तान का मसला हल भी नहीं हो सकते। और ये जो अभी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी आर्मी है और जो डिफेंस इदारे हैं वो बहुत मजबूत हो रहा है। हम देखें कि जो नए असलाह और एयरफोर्स की मजबूत करना और अफगान कमांडो को मजबूत करना, ये चीज एक उम्मीद है अफगानिस्तान में। और जो अभी इस जन फोर्सेस में जो ऑपरेशन हो रहा है मिलिट्री, ये खुला एक बात नजर आ रहा है कि जब जो मिलिटेंसी अफगानिस्तान में वो भी कामयाब नहीं हो सके। और एक बात है कि उसकी सपोर्टर्स अफगान हुकूमत ने नेटो को भी वाजी किया है कि और अमरीका को भी वाजी किया है कि जब तक मिलिटेंसी खसूस अफगान तालिबान की सिस्टम जो पाकिस्तान में उधर पनाहगुजीन है, जब तक वो चीज खत्म ना हो जाए, जब तक ये अफगानिस्तान में ये मसला हल नहीं हो सकते। और ये जो हम देख रहे हैं कि जो अमरीका किस तरीके से वो जो बयान आ रहा है वो बहुत वाजे कि हम पाकिस्तान में फिशार ज्यादा करेंगे जब तक वो हकानी नेटवर्क और जो मदारस है पाकिस्तान में जो अफगान तालिबान उधर उधर की दिनी तरगत हो रहा है और ऊपर भेजता है अफगानिस्तान में वो जंग के लिए।
बिल्कुल उमरी साहब, अगर हम देखें तो सेनेटर जॉन मिकेन जो है उनकी सरबराही में एक अमरीकी वफद जो है वो भी इस्लामाबाद में पहुंचा है और उन्होंने नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के अलावा जनरल बाजवा जो है उनके साथ और कई दूसरे रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी की हैं। एक तरफ उन्होंने जो इत्तलात आ रही हैं वहाँ से वो ये है कि साउथ वज़ीरिस्तान का दौरा किया और वहाँ पर जो फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज ने कार्रवाई की है उसको सराहा है, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है उसको सराहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि दरवाज़ों के पीछे पाकिस्तान पर दबाव भी डाला जा रहा है। ऐसे में जब सदर ट्रंप की इंतज़ामिया जो है कहा जा रहा है कि रवां माह के आखिर में वो अफ़गानिस्तान के लिए नई पॉलिसी जो है वो उसका ऐलान करेंगे, तो इस ये बात की जा रही है कि इस वफद का मकसद जो है वहाँ पहुँचने का, वहाँ विज़िट करने का, वो भी कुछ इसी अफ़गानिस्तान और रीजनल के जो हालात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान की जो वो है लीडरशिप उनसे बात करना था। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो ब्रिगेडियर सौलत रज़ा जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे उनके सामने वो हम रखेंगे। इस वक्त भारत से हमें सतीश मिश्रा साहब ने ज्वाइन किया है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन सौलत मिर्ज़ा साहब जो हैं, रज़ा साहब, वो हमारे साथ हैं इस वक्त, उनकी जानिब हम जाना चाहेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, सलाम अलैकुम। سولت رضا، آئی ایم سو سوری. بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی ہمارے ساتھ افغانستان سے عبدالحق عمری صاحب ہیں، ویل نون تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرف سے افغانستان کے لیے جو نئی کمٹمنٹ سامنے آئی ہیں، مزید فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے افغانستان میں عوامی سطح پر اور حکومت کی جانب سے بھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے الفاظ میں پشاور اور کوئٹہ شورا ہے، اس کے علاوہ حقانی نیٹ ورک ہے، ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جاتا یا کنٹرول نہیں کیا جاتا تو افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. اور ظاہر ہے یہ الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ان کے اثر و رسوخ کے نیچے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور افغانستان سے، کابل سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تو ہمارا جو وزارت خارجہ، ڈیفنس منسٹری اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے متعدد بار تردید کی گئی ہے. یہ پاکستان کے پر محض الزامات ہیں، اور بلکہ ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر، ہمارے علاقے سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اس میں سیولین بھی ہیں، فوجی بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر ایسے افراد کو یا ایسے گروپس کو پناہ دی جائے جن کے بارے میں عالمی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ تو میں تو ذاتی طور پر اس کو محض الزام برائے الزام سمجھتا ہوں. اور دراصل افغانستان کی جو سرزمین ہے، اور اس بارے میں تو اور بھی خاص طور پہ واشنگٹن کی جانب سے بھی متعدد بار کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں مستند قسم کے جو دہشت گرد ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں سے وہ نہ صرف افغانستان میں آپریٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو جب موقع ملتا ہے تو پاکستان میں بھی وہ مختلف ہمارے شہریوں کو اور شہروں کو نشانہ بناتے ہیں.
جی، تو لیکن افغانستان کی طرف سے اور ایون امریکہ کی طرف سے بھی، باقی بھی کئی ممالک ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرپرستی کرتا رہا ہے حقانی نیٹ ورک اور باقی جو وہاں پہ وہ گروپس جو افغانستان میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں. اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر دیکھیں تو کئی افغان طالبان کے رہنما یا اپنی موت خود مرے ہیں پاکستان میں، یا پھر وہ ڈرون کے ذریعے ادھر مارے گئے ہیں. تو ان شواہد کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ افغان طالبان کے رہنما جو ہیں وہ وہاں بزنس کرتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور یہ کہ پاکستان کا کسی حد تک اثر و رسوخ ہے ان پر.
دیکھیں، یہ کہنا کہ سرکاری طور پر کوئی ایسا جو سلسلہ ہے اس کی تو بہرحال سب نے سختی سے تردید کی ہے، لیکن یہ ایک طویل تاریخ ہے. جب روس کی جو جارے افواج تھیں ان کے خلاف جب جہاد شروع ہوا، تو یقیناً اس کا جو مرکز تھا وہ تو پاکستان ہی تھا، اور یہاں سے جو مختلف جہادی کے نام پر جو افغانستان میں سرگرم تھے ان کو امداد دی گئی، اور پاکستان سے ہی ملکی اور غیر ملکی امداد جاتی تھی. تو ابھی یہ جو سلسلہ تھا، یہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا، اور دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی، کئی یہاں پہ سیٹل ہو گئے، اور وہ پھر ایک منصوبے کے تحت ان کو یہاں سے نکالا بھی جا رہا ہے، اور ان کی جو بستیاں ہیں وہ خالی کرائی جا رہی ہیں. ابھی حقیقت تو یہ جو تیسری نسل ہے، تھرڈ جنریشن جو افغان پناہ گزینوں کی ہیں، تارکین وطن کی ہیں، مہاجرین کی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں. تو ابھی ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، افواج ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو کیا سرکاری طور پر ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، کیا خدا نہ خواستہ پاکستان کا یہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو یا افغانستان میں یہ مکروہ سلسلہ جاری رہے؟ یہ کچھ بات यानी इसका कोई जवाब नहीं है। इवन पाकिस्तान के नुक्ते नजर से भी हम भी इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इसमें अमन हो, सुकून हो, लोग कारोबार करें, बिजनेस करें और एक पुरअमन शहरी के तौर पर पाकिस्तान आए, यहाँ से पाकिस्तानी अफगानिस्तान में जाए, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए हमेशा।
ठीक, ओके ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि नेटो की तरफ से जो ऐलान किया गया है मज़ीद ट्रूप्स भेजने का, अमेरिका भी ये इरादा अपना उसका इजहार कर चुका है, पाकिस्तान का इस बारे में क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, किस तरह इस फैसले को पाकिस्तान में देखा जा रहा है और आप बतौर एक डिफेंस एनालिस्ट के इसको किस तरह देखते हैं?
इसलिए मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता, पुरअमन नहीं होता, वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं होते, तो अमेरिकन ट्रुप्स का जो रहना है वो तो इलाके के लिए सूदमंद होगा, क्योंकि फिलहाल अफगान नेशनल आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हालात पर काबू पा सके, और जो वहाँ पर सरगर्म तालिबान है अफगानिस्तान में वो दोबारा कुवत पकड़ सकते हैं, और जब तक जो मुकामी पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेज और फौज और मुकम्मल तौर पर एक मजबूत इकाई के तौर पर वहाँ पर सरगर्म नहीं होते तो ये नहीं कर इसको अमेरिकन ट्रुप्स का जो रहना है वहाँ पर
ठीक वो जरूरी है आपकी नजर में,
जो इत्तेहादी अफवाज का वो मेरे ख्याल में तो सूदमंद होगा।
ओके, आप हमारे साथ रहिए। सतीश मिश्रा जी, आपकी जाने मैं आना चाहूँगी, भारत की नज़र में और भारतीय जो तज्ज़िया निगार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नज़र में अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो किस तरह कायम किया जा सकता है, भारत ख़ुद इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, और नेटो की जानिब से ये जो ऐलान आया है कि वह अफ़गानिस्तान में मज़ीद फ़ौजी भेजेगा, इसके हवाले से भारत इस डिसीजन को किस तरह देखा जा रहा है भारत में? सतीश मिश्रा जी, जी आप सतीश मिश्रा साहब आप हमारे साथ हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है शायद, दोबारा हम उनको ट्राई करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है और आपने कहा है कि आप बतौर एक डिफेंस एनालिस्ट के ये समझते हैं कि जब तक पूरा अमन अफगानिस्तान में नहीं आता, वहाँ पर अमरीकी या आलमी जो अफवाज हैं उनका रहना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन बाज़ जो तज़िया निगार हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में, बाज़ जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस ट्रूप्स सर्च से, उसकी क्या वजह आप देखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं?
देखिए जी, इसकी जो मुखालफत है शायद उनके पास भी कोई सिलसिले में दलाइल हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पिछले जो हम हालात का जायजा लें तकरीबन 10 बरस का, तो उसमें एक बात तो वाज होती है कि अभी जो अफगान नेशनल आर्मी है और दीगर उनके जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो अभी तरबियती और तजुर्बाती मराहिल से गुजर रहे हैं, बेशक उन्होंने अपनी कुछ कारकर्दगी जाहिर की है, लेकिन मजमूई तौर पर अभी आलमी बरादरी उनकी जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन दिखाई नहीं देती। फिर इसके अलावा देखिए एक बात और भी है कि अफगानिस्तान की जो पोजीशन है जोग्राफिकल तौर पर, तो उसमें रूस की कुर्बत है, दीगर ईरान है साथ, और यकीनन साथ पाकिस्तान भी है, तो अभी इन तीनों ममालिक का भी अपना एक इन्फ्लुएंस है उस सिलसिले में, तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि अगर आलमी अफवाज जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की और अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो उनका, वो अगर वहाँ पर स्टे करेंगी उससे वो जो बैलेंस है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
ओके सतीश मिश्रा साहब, दोबारा हम ट्राई करते हैं, देखते हैं आपकी आवाज़, जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, और मिश्रा जी, आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं?
मैं सुन चुका हूँ
जी जी, प्लीज।
मेरा कहना ये है कि भारत में जो अमेरिकी इमदाद वहाँ बढ़ाई जा रही है, अमेरिकी फौज जो बढ़ाई जा रही है और जो नाटो की फौज बढ़ाई जा रही है, उसका खैर मकदम किया जा रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में अमन चैन नहीं होता, तब तक पूरे ममालिक में यहाँ पर दहशतगर्दी बनी रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका का वहां होने से, जैसा अमेरिका भी समझता है, हालांकि पाकिस्तान ये कहता है कि खाली इल्जाम है कि वो अकानी नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बात दुनिया जानती है कि अकानी नेटवर्क और शूरा उन पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं और उसकी वजह से अफगानिस्तान में काफी डिस्टेबिलाईजेशन रहा है। तो अमरीका की प्रेजेंस से, नाटो की प्रेजेंस से और रूस की अगर मदद भी ले ली जाए, तो उससे ये इंश्योर किया जा सकता है कि अफगानिस्तान में एक अमन चैन लाया जा सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में और जो भी मदद अफगानिस्तान को दी जा सकती है, चाहे वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी हो या सड़कें बनानी हो या पावर स्टेशन लगाने हो, उस सब में भारत पीछे नहीं रहेगा और भारत जितनी मदद कर सकता है वो करेगा। अभी ये जो एयर एग्रीमेंट हुआ है, उससे भी अफगानिस्तान को बहुत सारी मदद पहुंचाई जा सकती है और पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार इसके लिए कमिटेड है और अफगानिस्तान में जैसे भी अमन चैन कायम किया जा सकता है, उसके लिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका। अब्दुल हक उमरी साहब, आप ये बताइए कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसको दूर करने में ये नई कमिटमेंट नेटो की तरफ से और यूएस की जानिब से कितनी मौसर साबित हो सकती है?
देखिए, अफगान जो पीस प्रोसेस है, अभी जो तालिबान की जो पॉलिटिकल ऑफिस है दोहा कतर में, ये अफगान हुकूमत तालिबान को जो मैसेज दे रहा है कि वो अफगान हुकूमत से एक पीस टॉक के लिए एक मेज पर आए और बातचीत के रास्ते में इस जो अफगानिस्तान में जो जंग जारी है इसके खात्मा कर ले। जो अशरफ गनी का मैसेज था, ईट मैसेज था, उसमें कहा कि वो तालिबान जो पाकिस्तान या जो बिरूनी ममालिक के कब्जे में है, खुसूसन हम ये देखते हैं कि जो अफगान तालिबान की रहबर जो मिश्रान या जो हेड थे, वो पाकिस्तान की मदारिस में पढ़ रहे हैं और उधर उसकी पनाह है। और मौलाना समीउल हक या मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान की और जो मिलिट्री इदारे हैं, वो डायरेक्ट अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग करती है इधर, और जो उसकी जो असलाहा है या जो उसकी जो नेटवर्क है, वो सारी जो लिंक है पाकिस्तान में। अफगान हुकूमत या अफगान प्रेसिडेंट ने एक मैसेज दिया कि वो तालिबान जो पीस टॉक के लिए अब नहीं आते और जो जंग खात्मे नहीं, ये जंग खात्मा नहीं चाहते, इसलिए वाजे है कि वो अफगान नहीं है, वो इस सरजमीन का बच्चा नहीं है, ये बिरूनी ममालिक में सरबिया लोग हैं कि चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तबाही कर रहे। अभी जो अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी है वो रोज बरोज खड़ी सर हो रहा है और जो ऑपरेशन हो रहा है नाइट में, जो तालिबान के जो इधर जो कमजोर हो रहा है और अफगान हुकूमत तालिबान की जो रास्ते है पाकिस्तान जाती है और उसमें जो इक्विपमेंट और इकमाल हो रहा है जो रास्ते, वो बंद करने के लिए भी ऑपरेशन बॉर्डर एरिया में हम देखते हैं कि जारी है और अफगान हुकूमत इसमें इस तलाश में है कि वो अब जो रास्ते पाकिस्तान जा रहा है अफगानिस्तान से उसमें उसे उधर चेकपॉइंट बना दे और पाकिस्तान से जो तालिबान आ रहा है उसके खात्मे के लिए एक प्लान इधर है और अफगान हुकूमत जो अपने नेशनल आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए कोई हिदायत किया है कि जंग के मैदान में तालिबान को शिकस्त दे और इसका आखिरी हाल भी ये जंग है। जब हम तकरीबन देख रहे हैं कि 16 years अफगान हुकूमत ये कह रहा है कि तालिबान आ जाए और अफगानिस्तान हुकूमत से सोलह कर ले, हम
हम देखते हैं कि मुला बरादर अभी भी पाकिस्तान के पाकिस्तान में बंदी है और उधर वो जो अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करनी चाहती है तो पाकिस्तान उसकी मायनत कर रहा है और पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में सुलह आ जाए।
ठीक ओके ठीक ओके। ये ब्रिगेडियर सौलत रजा साहब आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। अब्दुल हक उमरी साहब का आपने सुना, इसी तरह आपने इससे पहले जो भारतीय तर्जिया नगार हैं उनको भी सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भी बात की जाती है कि आलमी जो हालात हैं उसमें तब्दीली के साथ साथ हर मुल्क जो है वो अपनी खारिजा पॉलिसी में भी तब्दीलियाँ लाता है। पाकिस्तान को अगर देखें तो अफगानिस्तान में बुरे हालात की वजह से पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तलखी भी काफ़ी हमें इस वक्त भी नज़र आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का इमेज जो है आलमी सतह पर जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो अभी तक पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो हकानी नेटवर्क की सरपरस्ती कर रहा है और यही ग्रुप है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो संभल नहीं रहे।
देखो जी, बदकिस्मती है कि हजारों अफराद की कुर्बानी दी और बेपनाह माली नुकसान उठाया, लाखों अफगान भाइयों की मेजबानी कर रहे हैं बरसों से, बरस से, लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा है अब इसका इल्जाम किस पे धरा जाए? एक तरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मुझे आप ये कोई रोज शख्स ये बताए कि अफगानिस्तान में गड़बड़ हो, लॉलेसनेस हो, तकरीबकारी हो, दहशतगर्दी हो, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। पिछले आपने देखा एक माह के दौरान पारा चनार में और कोयटा में और बाकी मकामात पर यहाँ भी जो दहशतगर्दी हुई, अभी उसके तदारुक के लिए ये हल किया जा रहा है। मसलन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पहले से बहुत बेहतर की जा रही है, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोगों की जो आमदोरफ्त है उस पर नजर रखी जाए, क्योंकि पहले तो आजादाना आमदोरफ्त होती थी, किसी पर कोई चेक नहीं है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये कहना कि सरकारी तौर पर कोई हक्कानी या कोई इस टाइप के और ग्रुप है उनकी सरपरस्ती की जा रही है, उसका देखें काबुल में अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उसके असरात पेशावर तक महसूस किए जाते हैं, या जैसे पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो यकीनन उससे काबुल भी मुतासर होता है, काबुल की हकूमत भी मुतासर होती है। तो पाकिस्तान की तो हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि किसी तौर इस खत्ते में अमन हो, और उस अमन के लिए हमने बहुत भारी कीमत अदा की है और मुसलसल अदा कर रहे हैं, और हमारे तमाम जराए तमाम अदारे हमारी हुकूमत और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम जो अनासर हैं वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में अमन हो। लेकिन
ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अगर ये वाकई महज इल्जामात है पाकिस्तान पर, ब्रिगेडियर साहब अगर ये वाकई महज इल्जामात है पाकिस्तान पर तो ये तो हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पर लग रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान ना अफगानिस्तान को ना बाकी हमसाय मालिक को और ना आलमी बरदरी को ये कन्वेंस करने में कामयाब रहा कि हम इस हकानी नेटवर्क की कोई सरपरस्ती नहीं कर रहे हैं?
ये तो अभी इसमें जो मैं ये भी कह सकता हूँ शायद हमारी कमजोरी है इस मामले में, और दूसरी बात यह है कि खासतौर पर अफगानिस्तान ने ये वतीरा अख्तियार कर लिया हुआ है और इसकी नामालूम मकासद हैं।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आइंदा भी इस मौजू पे आपसे बात होगी। बाकी मेहमानों की भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।